दे कि इतनी बड़ी हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत का पैगाम देकर भेजा, अल्लाह ने आखिर उनको भी अपने पास बुला लिया, तो फिर और बाकी कहाँ है। देखेंगे आज नबी सल्लम की ज़िंदगी का आखिरी दिन। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रहीकुम मख्तूम, इसमें से आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी दिन यहाँ से शुरू करेंगे। हयाते मुबारका का आखिरी दिन किताब में से देखें तो 628। बोझल दिल है और ज़ाहरी बात है कि किसी अपने से मोहब्बत होती है तो इंसान उसके लिए महसूस करता है, और कहाँ फिर वो हस्ती के जो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ ना हो जाए तो ईमान में ही नक्स है। तो आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में से एक दिन पहले क्या हुआ था कि आपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया, 7 दीनार थे सदक़े में दे दिए, हथियार मुसलमानों को हिबा कर दिए, चिराग जलाने के लिए तेल भी उधार में लिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, और एक ज़िरा एक यहूदी के पास 30 सा जौ के इवज़ रहन रखी हुई थी। और फिर हयाते मुबारका का आखिरी दिन आता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि दोशंबे के रोज़ यानी पीर का दिन मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ़ थे और अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबे कराम जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ़ थे नज़र डाली, फिर तबस्सुम फरमाया। नोट कीजिएगा, सहाबा की तरफ से जो आखिरी ठंडक अपने प्यारे नबी को मिली वो ये थी कि वो सफ़े बांधे हुए थे, दिल भी जुड़े हुए थे, पांव से पांव और कंधे से कंधा भी जुड़ा था, और मसरूफियत थी नमाज में। किसी भी लीडर के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती कि उसके बाद वाले लोग आपस में जुड़े रहे, कान हम बुनजान मरसूस, और तवज्जो रुख और हर चीज़ के लिए नज़रें अल्लाह पे लगी हों। बस ऐसा गिरोह ही है कि जिनको छोड़कर दुनिया से अल्लाह हमें भी लेकर जाए, क्योंकि जब साथियों के दिल जुड़े होते हैं और एक दूसरे को एक सीसा पिलाई दीवार की तरह तकवीयत देते हैं और तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, तो दुनिया की कोई ताकत भी फिर उनको उनके उस काम से, उनके उस मिशन से नहीं हटा सकती। ये ज़िंदगी का एक वो खूबसूरत रूप होता है कि जो अल्लाह सुबहाना ताला अपने नबियों को दिखाता है, और अल्लाह के नबी की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको इतने प्यारे साथी दिए, तभी तो आपके बाद फिर आपका मिशन जारी रहा, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने आपसे जो काम शुरू करवाए, सहाबाए कराम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वही काम किए, और इसके बाद फिर ये सिलसिला ताबईन और फिर तबा ताबईन तक चलता ही गया। फिर तबस्सुम फरमाया, इधर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी एड़ के पीछे हटे के सफ़ में जा मिले। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहे इतना खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही फितने में पड़ जाए, यानी आपकी मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें। आप भी तो महसूस कर सकते हैं ना कि जिससे मोहब्बत भी हो और जिसका इंतज़ार भी हो, और इस तरह एकदम उसको देखकर दिल की कैफियत क्या होती है। हो सकता है हमारे ये जज्बे अपने किसी खून के रिश्ते को देखकर हों, माँ बाप, भाई बहन, लेकिन सहाबा कराम अल्लाह के नबी से अपने माँ बाप और भाई बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो, फिर हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा लिया, यानी अपने कदमों पे चलकर आए हैं और फिर सबको देखकर तसल्ली दी और वापस चले गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی. وہ رونے لگی. آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے, اس لیے میں روئی. پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ کہلو ایال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی, اس پر میں ہنسی. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا سن کر فاطمہ روئیں اور اپنے دنیا سے جانے کا سن کر ہنسی. آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا بعد میں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ دنیا سے جائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ پچھلے گئے ہوں سے ملاقات تو ہوگی. یعنی ان کو اپنی موت کا سن کر غم نہیں لگا, اپنے باپ سے ملنے کی خوشی ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے, اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی, وا کربا اباہو, وا کربا اباہو, ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں. کیونکہ مومن کے لیے موت کی سختیاں ایک آخری سختی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا سے ایسے پاک کر کے لے جاتا ہے جیسے بچہ دنیا میں آتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور آپ کو تو پاک کیا کرنا تھا, آپ کے تو درجوں کی بلندی مقصود تھی. آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی. ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ اور نصیحت کی. ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا. کتنے سال پہلے؟ 7 ہجری, اور آج کتنی ہے؟ 13. اور ہر سال انہی دنوں میں آپ کو زہر تکلیف محسوس کرواتا تھا. یہاں سے بھی آپ نوٹ کیجئے کہ آپ اپنے بستر پہ جا رہے ہیں لیکن اللہ بہانہ بناتا ہے بندوں کے درجے بلند کرنے کا. اللہ کے رستے میں نکلے تھے اور زہر والا کھانا کھلایا گیا, تو اللہ چاہے تو اس کو شہادت کی موت کہے یا جو بھی کہے, اللہ کے نبی کے تو درجے اس سے بھی بلند تھے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ, خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے. دیکھیے, اگر آپ کو سارا ہی غیب پتا ہوتا اور ہر بات ہی پتا ہوتی تو کیوں کھاتے؟ منہ میں لقمہ رکھنے سے پہلے ہی پتا چل جاتا. تو عقیدوں کی درستگی ہوتی ہی سیرت اور قرآن کو پڑھ کر ہے. کسی سے کسی کو کچھ بھی لین نہیں, کچھ دین نہیں. یہ دعا کیجئے کہ نبی کے بارے میں آپ کے میرے دل دماغ میں جو عقائد ہیں, جو خیالات ہیں, وہ سیدھے ہو جائیں, کیونکہ ہمیں اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. اس میں کوئی تعصب بھی نہیں برتنے کی ضرورت ہوتی. ہو سکتا ہے شروع سے آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں آپ نے کچھ اور سنا ہو, تو کیا ہوا؟ بہت ساری چیزیں ہم نے پیدا ہونے سے لے کے اب تک سیکھی نہیں, اپنی اصلاح نہیں کی. تو کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع کر دیں, اختلافات میں پڑ جائیں؟ اور سچی بات ہے کہ جب اللہ سے آپ مانگتے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. آج سے شعور سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ تو جس چیز سے راضی ہے نا مجھے اس سوچ, اس عقیدے, اس ہر معاملے پہ ڈال دے, بجائے بالا تر کر کے اس بات سے کہ میں شروع سے کیا کر رہا اور کیا نہیں. آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی, فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام. آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے. आप देखिए, नबी की फ़िक्र और हमारी फ़िक्र, आज हमारी फ़िक्रें, और ऐसे वक्त में जब जान को नहीं लगी हो, दुनिया से जाने का वक्त और आखरत में आने का वक्त ऐसा ही जैसे गाड़ी से पाँव निकाल कर बाहर रखने का वक्त, एक जहाँ से रुखसती और दूसरे जहाँ में आने का वक्त, बहुत कठिन वक्त। इसलिए बच्चे को भी दुनिया में आने के वक्त तकलीफ़ है ना। याद रखिए, दो जहानों का मिलाप, एक से आना एक में जाना, ये बड़ी कैफियत तकलीफ़ की होती है। ज़िंदगी में हमेशा ही मुश्किल होता है। लड़की की रुखसती पे लोग क्यों रोते हैं? पहले दुआएं मांग मांग के और इतनी तैयारियां कर कर के अल्लाह से मांगा, और वो दिन आया तो सब जाते वक्त रो रहे हैं। एक जगह से आना और दूसरी जगह जाना पिछलों को उदास, और आने जिधर आए वहाँ खुशी दे देता है। ईमान वाला ऐसे ही होता है कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो वहाँ की खुशियाँ देख रहा होता है। तो आ कीजिए, जब हम दुनिया से जाएं ना तो हमें गम ना हो, खुशियाँ हों। कि या अयतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राधियत मर्दिया। और इसके बाद फिर नज़ा रवा होती है, आप नज़ा की कैफियत में चले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने ऊपर टेक लगवा दी। इनका बयान है कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे सीने से टेक लगाए हुए वफात पाई, और आपकी मौत के वक्त अल्लाह ने मेरा लुआब और आपका लुआब इकट्ठा कर दिया। हुआ ये कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपके पास तशरीफ़ लाए, इनके हाथ में मिसवाक थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे टेक लगाए हुए थे। मैंने देखा कि आप मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। मैं समझ गई कि आप मिसवाक चाहते हैं। मैंने पूछा, आपके लिए ले लूं? ज़रा से इसको इमेजिन करें, आपको इन चीज़ों से कितनी मोहब्बत थी कि हिम्मत नहीं है, चबाया जा नहीं रहा, लेकिन मिसवाक करना चाहते हैं। क्या हम भी ऐसा ही ख्याल रखते हैं अपनी तहारत का? आपने सर से इशारा फरमाया कि हाँ। मैंने मिसवाक लेकर आपको दी तो आपको कड़ी महसूस हुई, यानी सख्त थी। मैंने कहा, इसे आपके लिए नरम कर दूं? आपने सर के इशारे से कहा हाँ। यहाँ से देखिएगा, हज़रत आयशा कैसी मिजाज शनास थी अपने शौहर की। मैंने मिसवाक नरम कर दी और आपने नहायत अच्छी तरह मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था, आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए सख्तियां हैं, इन्न लिल मौति सकरात। और मौत की सख्तियां तो हर एक पे हैं। आपके ऊपर मौत की सख्तियां थीं जिनके अल्लाह ने गुनाह माफ़ किए हुए, ना अगले ना पिछले, कुछ भी उनके सर पे नहीं। अल्लाह ने आपको तो पहले ही बचा लिया हर गुनाह से। ज़रा सा अपने ऊपर लीजिए, आना ये वक्त हम पे, सोचिए कब आएगा। गर्मियाँ के सर्दियाँ, अकेली होंगी या पास कोई होगा, सफ़र में होंगी कि हजर में होंगी, अपनों में होंगी कि बेगानों में होंगी, अपने वतन में होंगी या दियारे गैर में होंगी। अपनी मौत को याद किया करें। अक्सिरु हाजिमुल लज्जात, यानी अल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली को अक्सर याद किया करो, यानी मौत को याद किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम जीने को ही याद रखते हैं तो जीने वालों को जाने की तैयारी करनी चाहिए। मिसवाक से फारिग होते ही आपने हाथ से उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की, और दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, इन अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा और सालहीन के हमरा जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर और मुझे रफ़ीक आला में पहुंचा दे। ए अल्लाह रफ़ीक आला। आखिरी फिक्रा तीन बार दोहराया और इसी वक्त हाथ झुक गया और आप रफ़ीक आला से जा लाहक हुए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक्य 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी दुशंबे का दिन यानी मन पीर का दिन था, चाश्त की शिद्दत के वक्त पेश आया यानी सुबह का वक्त था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। आप ज़रा मदीने की गलियों का तो सोचिए, क्या आफत टूटी होगी। आपके पसीने को जमा करने वाले, आपके कदमों पे कदम रखने वाले, वो सच्चे आशिकाने रसूल नहीं कहते थे खुद को, वो तो मुहिब्बाने रसूल थे। इश्क का लफ्ज़ तो बाजारी लगता, क्या उनके दिलों पे उस वक़्त गुजरी होगी। अपने किसी बहुत प्यारे की जान कनी का वक्त याद कीजिए। गम हाय बेकरां था, यानी ऐसा गम टूटा मदीना पे कि चैन ही ना पड़े। इस हादसा दिल फिगार, यानी ऐसा हादसा जिससे दिल ही फट जाए, इसकी खबर फौरन फैल गई। अहले मदीना पर कोहे गम टूट पड़ा, आफाको अतराफ तारीख हो गए। अनस रजी अल्लाह अन्हों का बयान है कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, इससे बेहतर और ताबनाक दिन मैंने कभी नहीं देखा। और जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, उससे ज़्यादा कबीह और तारीख दिन भी मैंने कभी नहीं देखा। जी, मदीना की तारीख में सबसे खुशी वाला दिन जिस दिन आप तशरीफ़ लाए, और तलाउ बदरु अलैना कि 1/14 का चांद हमारे शहर में आ उतरा, और तारीकियां उस दिन जिस दिन वो चले गए। आपकी वफात पर हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने फरते गम से फरमाया, या बताहू अजाब रब्बन्नाहू, या बताहू मन जन्नतुल फिरदौसी माहू, या बताहू इला जिब्रीली नन आहू। हाय अब्बा जान, जिन्होंने परवरदिगार की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय अब्बा जान, जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। हाय अब्बा जान, हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। यदि ये आहें थी जो फातिमा के की जुबान से आ रही थी। बेटी के लिए बाप क्या होते हैं ये बेटियां भी जानती हैं और बाप भी जानते हैं। किसी भी अपने का दुनिया से जाना सबसे ज्यादा दिल को खाली कर देता है, लेकिन चंद दिन गुजरते हैं दोबारा इंसान उसी रंग रौनक में। उस दिन तो ऐसे लगता है ना हंसेंगे, ना बोलेंगे, ना खाएंगे, ना पहनेंगे, ना ओढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर वही रौले रप्पे, दुनिया दुनिया की बातें। सच नहीं है ये? किस तरीके से लोग भूल जाते हैं, कितनी जल्दी भूल जाते हैं। हमें भी लोग भूल जाएंगे, मत अपने आप को बहुत अहम समझिए। उधर विरासत बटेगी, उधर बेटे अलग अलग घरों के, उधर माँ की चूड़ियाँ गईं इसके उसके नाम, फिर सब जिंदगी समर जाती। बहुएं भी कहेंगी चले कमरा खाली हुआ, धुलवा दो सरफ डालकर, कुछ इसमें स्प्रे करा दो, और जिन कपड़ों पे कोई में कोई मर जाए उसको तो पकड़ के कहीं जाके शायद दफना ही देते हैं कि कहीं इसको पहन के हम भी ना मर जाएं। इन चीज़ों के पीछे हम मरते हैं, इनके पीछे रोते हैं। ये मेरी आपकी असल ज़िंदगी का हासिल, ये है वो चीज़ें जो हमें जीने नहीं देती, ये है वो चीज़ें जो हमें मकसद से रोकती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का मौक़िफ़ देखिएगा। वफ़ात की खबर सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के होश जाते रहे। उन्होंने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुछ मुनाफिकीन समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई, बल्कि आप अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं। जिस तरह मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे और अपनी कौम से 40 रात गायब रहकर इनके पास फिर वापस आ गए थे, हालांकि वापसी से पहले कहा जा रहा था कि वो इंतकाल कर चुके हैं। खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर पलट कर आएंगे और इन लोगों के हाथ पांव काट डालेंगे जो समझते हैं कि आपकी मौत वाकई हो चुकी है। देखिए, ये तो हज़रत उमर की मोहब्बत थी ना, जब भी कभी को दुनिया से गया पीछे वालों को यही लगता है कि ये वापस आ जाएगा, रिपोर्ट गलत होगी, देखो वो सांस ले रहा है, देखो कफन हिल रहा है, देखना अभी कुछ खबर आएगी, ये झूठ था। बचपन में ऐसी कहानियाँ पढ़ी होती हैं ना, कब्र में से आवाज़ आई, फिर फलां जिंदा हो गया। हकीकत है कि उम्र का ये जो एक्शन है ना, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कह लें, ऐसे ही होता है। जब हम जाएंगे ना, लोगों को यकीन भी नहीं आएगा, कोई कहेगा अभी तो बात हुई, वहां तो देखा, वहां तो मिले, ये तो कहा, फिर ढूंढ ढूंढ के चीजें लोग लाते हैं, ये देखिए, ये सुनिए, ये पढ़िए। 2, 4, 10 दिन गए, रात गई, बात गई, फिर आगे की मंजिलें हैं। कहीं से भी अब जाते हैं ना लोग, चाहे खुशी भी हो लेकिन दिल पे बोझ होता है कि कोई जा रहा है, और एक आध दिन के बाद सब संभल जाते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, अब जिम्मेदारी भी गई, रिलैक्सेशन फील होता है बंदे को। तो हजरत उमर का ये गुमान याद रखिए, जज्बात में अटका हुआ था, ये हकीकत नहीं थी। क्योंकि जब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों का मौकिफ सुना तो क्या हुआ देखिएगा। इधर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों सख में वाकई अपने मकान से घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए, सनख लफ्ज है कुछ मिटा हुआ है, लेकिन सनख में वाकई अपने मकान से घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए और उतरकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। फिर लोगों से कोई बात किए बगैर सीधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसद फरमाया। आपका दस्ते मुबारक धारी दार यमनी चादर से ढका हुआ था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों ने रुख अनवर से चादर हटाई और उसे चूमा और रोए, फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौत जमा नहीं करेगा जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आपको आ चुकी। यानी अबू बकर सिद्दीक बावजूद मोहब्बत के और आपके साथ साए की तरह रहने के इस वक्त हक बात को पा गए। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो बाहर तशरीफ़ लाए। इस वक्त भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों से बात कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इनसे कहा, उमर बैठ जाओ। हज़रत उमर ने बैठने से इनकार कर दिया। इधर सहाबा कराम हज़रत उमर को छोड़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की तरफ मुतवज्जे हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, अम्मा बात मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमुत। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم। ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين। सूरह आले इमरान की आयत 144 है। अम्मा बात तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाकई हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, मोहम्मद नहीं है मगर रसूल ही, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो मर जाएं या इनकी मौत वाकई हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, मुराजे के दीन छोड़ दोगे? और जो शख्स अपनी एड़ी के बल पलट जाए तो याद रखे कि वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अन करीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। صحابہ کرام کو جو اب تک فرت غم یعنی غم کی شدت سے حیران و ششدر تھے، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ہی ایسا لگتا تھا گویا اللہ لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا. 7 سال پہلے احد کے موقع پہ یہ آیتیں اتری تھی. ریہرسل تو اللہ نے میدان احد میں کروا دی تھی، مصعب بن عمیر کی شہادت کو لوگ اللہ کے نبی کی شہادت سمجھے تھے، لیکن آج جب حقیقی واقعہ پیش آیا تو اصل سمجھ گئے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا انتہائی متحیر حیران اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. دیکھیے قرآن لفظ موت کے بول رہا ہے، اور کیا کیا بات ہو رہی ہے، کیا اس میں کوئی گستاخی ہے؟ قرآن کے لفظ ہیں، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، افائی ماتا کتیلا، ہاں ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اور ابو بکر کے الفاظ ہر تاریخی کتاب میں دیکھیے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. آج نہ جانے ہم نے یہ جھگڑے کیوں لے لیے، اور اس سے ملا بھی کیا اور لینا کیا ہے؟ سنتوں کو مانیے، آپ کو مجھے اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس لیے یہ کہا کرے کہ جو پیغام نبی کا ہے وہ زندہ ہے، ہم ان کے مشن کو لے کر چلیں گے. جس رستے میں آپ نے زندگی کھپا دی ہم بھی اس میں کھپ جائیں. اللہ ہمارے جسم کا ایک ایک رواں اس میں کھپا دے، ہمارے مال کا ایک 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 پینی قطرہ اس میں لگوا دے، ہماری صحت، ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر بلانگنگ اللہ اپنے رستوں میں کھپا دے، شاید کل اللہ کے نبی کو منہ دکھا سکے. باتیں کیا کرنے کی ضرورت ہے زیادہ، ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرتے وہ ہیں جو من چاہتا ہے، جو معاشرہ چاہتا ہے، جو دنیا چاہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی وقت آیا جو ہر موت کے بعد ہوتا ہے، اور وہ ہے تجہیز و تکفین و تدفین. تجہیز کہتے ہیں جانے والے کا سامان جمع کرنا، جہیز لفظ بھی اسی سے ہی ہے، ایک قسم کے لڑکی کو بھی وہ رخصت ہی کارے ہوتے ہیں. تکفین کفن ہے اور تدفین دفن ہے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا. ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث اور مناقشہ، مجادلہ و گفتگو ہوئی. مناقشہ نقشہ سے، قرآن میں بھی آتا لفظ، یعنی اختلاف رائے ہو گیا. کوئی کہنے لگا مہاجرین میں سے اب کوئی آگے آئے گا، کوئی انصار سے آئے گا. یہ فطری سی باتیں ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ایسی باتیں عام ہیں. ترتید و تنقید ہوئی اور بالآخر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا. لیکن دیکھیں چند گھڑیاں بھی اسلام اور مسلمانوں کو بغیر لیڈرشپ کے نہیں چھوڑا، کیونکہ لیڈرز کے بغیر صرف بکھرے ہوئے موتی ہیں، چاہے وہ تسبیح کے کیوں نہ ہو. لیڈر باندھ لیتے ہیں، ماں باپ باندھ لیتے ہیں. ماں باپ کی زندگی میں ایک ساتھ رہنے والے بھی بکھر جاتے ہیں جب ماں یا باپ دونوں ہی نہیں رہتے. اس کام میں دوشنبے کا باقی ماندہ دن گزر گیا، یعنی منڈے ہی کے دن یہ سب کچھ ہو گیا، اور رات آ گئی. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے. پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی. اس وقت تک آپ کا جستے مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا. گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا. منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے آپ کے، علی چچا زاد بھائی تھے، عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، یعنی آپ دیکھیے تو حضرت عباس کے دو بیٹے اور علی جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں نے غسل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم، حضرت عباس فضل اور قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، اسامہ اور قشران پانی بہا رہے تھے، علی غسل دے رہے تھے اور اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد آپ کو تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا. آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا. اس فیصلے کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اس کے نیچے قبر کھودی، قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی تھی، یعنی جہاں دکھتی ہے نا قبر وہاں ڈیڈ باڈی نہیں ہوتی، سائٹ پہ تھوڑی سی جگہ کھول کے اس میں ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی. کوئی امام نہ تھا، سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا. چہار شنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی، رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیان جو وقت تھا اس میں پھاوڑوں کی آواز سنی. کچھ بھی نہیں پتا، سب کچھ نارمل ہو رہا ہے. ہمارے ہاں کا جو کوہرام مچتا ہے اور جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اور کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور کچھ کرتا ہے، ایسی چیزیں نہیں تھی وہاں. یہ تو انڈو پاک کا کلچر ہے. آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ہستی دنیا سے چلی جائے اور اتنے ٹھہراؤ اور اتنے سکون سے سب کچھ ہو جائے. اصل میں جانے والا یہی پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں تو جاؤں گا لیکن تم بھی میرے پیچھے آؤ گے. اور جب یہ بات یاد رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو صبر بھی دے دیتا ہے. جی آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ، آپ نے اس سارے میں سے کیا سیکھا، یا کوئی سوال کوئی بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مجھے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا. اور ہمارے جو جاتے ہیں وہ کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کامیاب تو نہیں تھے نا. اور جتنا بھی کسی کا نقصان ہو جانے کا، ہمیں کسی کے جانے سے کچھ نقصان ہو، اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہوتا ہے. جی آپ مائک لے لیجئے پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
کل نفس ذائقۃ الموت، صرف یہی سیکھا ہے کہ سب نے ہی جانا ہے، اور جو ہمارے پیارے جا چکے ہیں ان کی یاد بہت ستاتی ہے، لیکن ایک یہی بات سوچ کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے، اور میں 10 سال سے ان سے ملی نہیں. اور میں مطلب بتا نہیں سکتی کہ جو میرے جذبات ہو رہے ہیں سنتے ہوئے، لیکن ہمیشہ یہی، اب اس کے بعد سے اب یہی سوچتی ہوں، اور یہی سوچ کے صرف تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانے، اور ہم وہاں جا کے مل لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک بس کہ موت کے لفظ سے نا بس ایک بات یاد رہتی ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، صرف یہی ایک جو چیز ہے نا موٹیویشن، وہ اچھے کام کرنے پہ مجبور کر رہی ہے بس. اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کروائے. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ پلیز.
السلام
लगता
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
है दादू जी, मेरे अभी तो गया हूँ इस दुनिया से, बहुत टाइम हो गया है, मतलब लाइक 14-15 साल हो चुके हैं, तो तब हम बहुत छोटे थे। लेकिन अब देखिए कि ये जब बड़ा है ना, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि एक जहाँ से दूसरे जहाँ में जाना, तो मैं ये सोच रही थी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जब आप चले जाते हैं तो कितना कितना टाइम नहीं मिलते, तो वो भी हमें भी पता होता था। हमने जैसे कोरोना आया तो मतलब सब फ्लाइट बंद हो गई, तो नहीं कहीं जा सकते, तो इस तरह से मतलब हमें नहीं पता कि हम मतलब किस टाइम पे इस दुनिया से चले जाए, और हमारे जो चले गए हमने उनसे भी एक दिन तो मिल ही लेना है। अल्लाह ताला हमें भी उनको भी जन्नत में जाएगा दे और हमें भी जन्नत तक पहुंचा दे। और मैंने यही सीखा है कि हमने इस दुनिया से चले जाने, और जो ये अफरा तफरी में पड़े हुए हैं दुनिया के लिए, माल के लिए, अपनों के लिए, मतलब जैसे कि आपने फरमाया कि जाने के थोड़े दिन बाद ही, अपनी हकीकत है कुछ दिन बाद ही वो नॉर्मल रूटीन हो जाती है, बल्कि दूसरे तीसरे दिन ही कुछ जो तो दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनका इतना नहीं होता, वो हंस भी रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, तो कई बार उनको देख के दिल में होता है कि अच्छा हमारा तो इतना प्यारा चला गया और आप यहाँ पे आके हंस रहे, तो वो जो मतलब इस तरह की सारी चीजें होती है। लेकिन वही बात है कि एक दिन हम सबने चले जाना है, और हमें अपने मकसद से नहीं हटना चाहिए। यही मैंने आज के लेक्चर से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी रुखसाना, आप माइक लीजिए। इनका माइक खोल दीजिए प्लीज, या आप खुद ही खोल लीजिए, अनम्यूट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
मैं फ्रांस से बोल रही हूँ। उस्तादा जी पूरा जो बयान सुना है रोते हुए, इतनी बड़ी हस्ती हमसे भी छुपे, और लेकिन इस चीज का गम अभी ये लगाना है, गम वो नहीं कि वो बिछड़ गए, वो तो जो आर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबने जाना है, हमारा ईमान है इसके ऊपर। गम अभी इस चीज का है कि अब जो मिशन वो जो हमें दिए गए हैं हमने उसको लेके चलना है, उनका मिशन रहता है, वो हमारे साथ है, उनकी सुनते उनकी जिंदगी हमारे साथ है, हमने उस मिशन को लेके चलना है इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारे अपने माँ बाप के साथ भी और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इंशाल्लाह हमारी उनके साथ हौजे कौसर पे मुलाकात होगी, अगर हमने अपना हक अदा कर दिया तो। अल्लाह हमें उम्मती पक्का सच्चा ईमान के साथ उनकी सुन्नतों के ऊपर, उनके दिए हुए नूर रोशनी कुरान जो आप हम तक पहुंचा रही है, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए, बहुत इसलाह हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा इसलाह हो रही है। और आज तो आज जो दिन दूसरा तीसरा दिन जो चल रहा है प्रोग्राम, बहुत ही दिल बहुत ही तड़पता है, अल्लाह ताला आपको इसकी जजाए खैर अता फरमाए, जो आप हमें इतने बड़े इलम से नवाज रहे हैं, उनका मिशन लेके चल रहे हैं, अल्लाह हमें आपका साथी बनाए, जजाक अल्लाह खैर सना जजा,
आमीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप लोग लेते जाइए माइक प्लीज़, अपना अनम्यूट कर लें ताकि टाइम बीच में खाली ना जाए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथा जी,
वालेकुम अस्सलाम।
जिस तरह इतने खूबसूरत तरीके से आपने ये समझाया, मेरे तसव्वुर में वो ख्याल आ रहा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सुबह उन्होंने उठकर तमाम सहाबा कराम को नमाज की हालत में देखा और एक मजबूत दीवार की तरह देखा, तो अपने अमाल की तरफ नजर जाती है, अपने लोगों के अमाल की तरफ नजर जाती है, और बहुत दुख होता है कि और ये जस्तजू भी है कि हमारे अमाल ऐसे होंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हम पे फख्र हो, कोशिशें पूरी हैं, मगर दुआ है अल्लाह ताला हमें इस काबिल कर दे, हम कुछ तो ऐसा कर जाएं कि हम भी कह सकें हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। जज़ाकअल्लाह खैर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने ये सुनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा उठाया और सहाबा कराम को नमाज पढ़ते देखा और एक मजबूत दीवार की तरह देखा, तो उनको जो सुकून महसूस हुआ, तो अपने आमाल की तरफ नजर जाती है, दिल में एक जुस्तजू पैदा होती है कि या अल्लाह हमारे आमाल उसा कर दे कि हमारे नबी को हम पर भी फखर हो, हम भी उम्मत हैं, हम भी इस उम्मत वस्त का हिस्सा हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें, कुछ तो ऐसा कर सकें कि हम भी काबिल फखर हो। सबके लिए दुआ। जज़ाकअल्लाह खैर साहिबा जी।
जी वालेकुम अस्सलाम।
आखिरत का टॉपिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन के जो दिल को होता है कि हम बस अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र बस लगा दे। हमारे नबी जो है वो उनका आखिरत का सफ़र और ये वाकई कोई दिल की फीलिंग जो होती है ना बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल ही। अल्लाह आपको इसकी जजा दे और हमारा जो है ईमान बिल आखिर मजबूत रखे और हर वक्त हमें जो है वो फिक्र आखिरत ही लगा दे।
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन सारी बातों को, इन फीलिंग्स को अपने दिल में रखें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन सदका जारिया बने। आप देखिए कि काम करने वाले चले जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होता। वो कहते हैं ना कि नबूवत तो चली गई, रिसालत पूरी हुई, लेकिन कारे रिसालत अभी बाकी है। इसमें जो कुछ हम कर सकते हैं वो करना है और बाकी चीज़ें तो दूसरी हैं। ये इनके कुछ सवाल हैं। ये कहते हैं कि आई हैव हर्ड वंस दैट बिफोर डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़राइल केम टू प्रॉफिट बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हिम टू वेट टिल एंजल जिब्राइल कम। मैंने ये रिवायत कहीं नहीं पढ़ी, अगर आपने कहीं पढ़ी है तो यकीनन होगी। इसकी सनद क्या है थोड़ा सा उसको देख लीजिए। इस बुक को जो कि मैंने बहुत ही अनटच्ड पढ़ाया आपको, ताकि इतनी ऑथेंटिक बुक है तो इसी के मुताबिक रहें। कहीं कोई बात है तो यकीनन होगी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं क्योंकि अब अगला टॉपिक बिल्कुल ही एक अलग है। अल्लाह ने यहाँ ये मौजू पूरा कराया। आप लोग इंशाल्लाह ताला अगले मंडे से हम नबी सल्लम का जो इस बुक के साथ कुछ छोटे ज़मीमे हैं उनको लेंगे। सीरत तो यहाँ पूरी हुई, लेकिन आगे खाना नबूवत है और इसी तरह से आपकी डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम मंडे को लेंगे। और इसके बाद फिर हम आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब से भी हमसे बेहतरीन कबूल करें। ये तो अब समझ आ ही गया कि कुछ लोग इस वक्त सुनना चाहते हैं और ये टाइम बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि चलिए नमाज़ें वगैरह भी पूरी हो चुकी होती हैं और सोने के से पहले का। तो इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को बताएंगे कि इस सीरीज़ के आगे क्या चलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।